आज है 16 जुलाई दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। तुर्की में सेना ने किया देश को नियंत्रण में लेने का दावा। राष्ट्रपति अर्दोगान ने लोगों से सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र का समर्थन करने की अपील।
फौज जो है वो अमूमन तारीखी तौर पर वो ज्यादा कमालिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जाती है। कमालिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है सेक्युलर तुर्की, इस्लाम को दूर रखना हुकूमत से।
अंतर्राष्ट्रीय जगत ने की सेना की कार्रवाई की निंदा और नीस में नेताओं ने सरकार से पूछा सवाल, क्या रोका जा सकता था हमला। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। तुर्की में सेना के एक धड़े ने सत्ता पर नियंत्रण करने का दावा किया है। सेना के इस धड़े की तरफ से टीवी पर एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का तख्ता पलट किया गया है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि ये काम सेना के एक छोटे से धड़े का है और इसे नाकाम कर दिया जाएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तुर्की की संसद समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के बाहर सेना के टैंक तैनात हैं। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कर्फ्यू और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये कहा गया है कि अंकारा में विशेष सुरक्षा बल के मुख्यालय पर हवाई हमले में 17 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। वहीं तख्ता पलट की कोशिश कर रहे सेना के धड़े ने एक हेलीकॉप्टर को सरकार का समर्थन कर रही सेना ने गिरा दिया है। फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस में हुए हमले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था, पुलिस ने उसकी पहचान मोहम्मद लावेईज बहलूल के रूप में की है। पुलिस को ट्रक के अंदर ऐसे कागजात मिले हैं जिससे पता चलता है कि 31 साल के बहलूल फ्रांसीसी ट्यूनिशियाई नागरिक थे और नीस में रह रहे थे। अभी इस बात की जांच चल रही है कि ट्रक ड्राइवर के साथ इस हमले में क्या और भी कोई लोग शामिल थे। फिलहाल किसी भी चरमपंथी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 200 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं और करीब 84 लोगों की इस हमले में मौत हो गई थी। घायलों में करीब 50 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में फ्रांस, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, अमरीका और ट्यूनिशिया के लोग शामिल हैं। अमरीकी कांग्रेस ने 11 सितंबर के हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट के उन 28 पन्नों को सार्वजनिक कर दिया है जिसमें हमलावरों और सऊदी अरब के बीच संबंधों पर टिप्पणी की गई थी। शुक्रवार को जारी इस गुप्त दस्तावेज के अनुसार सऊदी हुकूमत और इन हमलावरों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं नजर आता, लेकिन ये संभव है कि उन्हें देश के अंदर कुछ लोगों से आर्थिक मदद मिली हो। इस दस्तावेज को सार्वजनिक किए जाने के लिए कांग्रेस और अमरीकी प्रशासन के बीच काफी समय से बहस चल रही थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल बिन अहमद अल जुबैर ने कहा है कि इस रिपोर्ट से साफ है कि सऊदी अरब पूरी तरह से बेदाग है। सऊदी दूतावास में हर साल हजारों लोग वीजा लेने के लिए आते हैं। क्या यूनाइटेड एयरलाइंस का टिकट खरीदने वाले लोग भी यूनाइटेड एयरलाइंस के भागीदार होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 9/11 हमला इतिहास में सबसे ज्यादा जांच किया गया हमला है और इसमें साफ है कि सऊदी अरब के अधिकारी बेदाग हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तुर्की की राजधानी अंकारा में रात करीब 10 बजे सेना के जेट विमान और हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। सेना के वाहनों ने इस्तांबुल के ब्रिजों को बंद कर दिया और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तुर्की की सेना की तरफ से टेलीविजन पर वक्तव्य पढ़ा गया कि उन्होंने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे गुट का कहना था कि देश अब पीस काउंसिल चलाएगी और नया संविधान जल्द से जल्द लिखा जाएगा। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा कि सैनिक कार्रवाई की उन्होंने निंदा की और कहा कि ये तख्ता पलट की कोशिश नहीं है। तुर्की के टेलीविजन के अनुसार सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हुलूसी अकर समेत सेना अधिकारियों को अंकारा के सैन्य मुख्यालय पर बंधक बना लिया गया है। अपनी छुट्टी से आनन फानन में लौट रहे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोगान ने लोगों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तो लगातार जो है घटनाक्रम बदलता जा रहा है तुर्की में। ताज़ा जानकारी के लिए इसके साथ मेरे साथ लाइव स्टूडियो में हरिता, क्या जानकारी है?
जी, जैसे कि हमने अभी बताया, तुर्की में कल देर रात सेना के एक धड़े ने सत्ता पर नियंत्रण का दावा किया और टीवी पर ये एक बयान जारी किया गया। उसके बाद से तुर्की में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राजधानी अंकारा और तुर्की के सबसे बड़े शहरों में से एक इस्तांबुल में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अंकारा में संसद में धमाके, कई धमाकों की खबर है और गोलीबारी भी अंकारा में हुई है। टीवी पर प्रसारित बयान में कहा गया था कि देश पर पीस काउंसिल का नियंत्रण है और कर्फ्यू और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इस बयान में ये भी कहा गया कि सेना में अब नया संविधान लागू होने जा रहा है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सेना के छोटे से धड़े का काम है और इसे कोई बड़ा समर्थन हासिल नहीं है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि इस कोशिश को देश की सरकार नाकाम कर देगी। उधर अंकारा और इस्तांबुल में कथित तख्तापलट की कोशिश का असर पिछले कई घंटों से देखा जा रहा है। सरकारी टीवी के दफ्तर पर कब्जे से लेकर अंकारा और इस्तांबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद करने की खबरें आ रही हैं। सरकार की महत्वपूर्ण इमारतों के बाहर टैंकर तैनात हैं। इसके अलावा तुर्की में टीवी के मुताबिक वरिष्ठ सेना अधिकारियों को अंकारा के मुख्यालय, सेना के मुख्यालय में बंधक बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हुलूसी अकर का, जिनका आपने जिक्र किया, वो भी इनमें शामिल हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू ने यह खबर दी है कि अंकारा में गोलबासी स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट पर हवाई हमला किया गया है जिसमें 17 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। और अंकारा में ही सरकारी लड़ाकू विमान ने सत्ता पर नियंत्रण करने वाले सेना के धड़े के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तो अंकारा और इस्तांबुल में इस वक्त बेहद तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और नई नई घटनाओं की जानकारी हमारे सामने आ रही है, और पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जा करने की खबर है। और जो तस्वीर इस वक्त निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अंकारा में तख्तापलट की कोशिश करने वाले सेना के धड़े ने एक तरह से कब्जा कर लिया और बहुत तेज़ी से अपने कब्जे में मीडिया संस्थानों को भी लिया जा रहा है। और इस्तांबुल में सरकारी सेना का इस वक्त हम दबदबा देख पा रहे हैं। और राष्ट्रपति एर्दोगान जो छुट्टी पर गए थे वो लौट आए हैं। इस्तांबुल पहुंचने की उनकी खबर है। इससे पहले जब वो नहीं थे, अज्ञात स्थल पर थे, और उन्होंने आईफोन के जरिए, फेस टाइम के जरिए एक इंटरव्यू दिया टीवी चैनल को। उन्होंने कहा कि ये काम अमरीका आधारित मुस्लिम धार्मिक नेता फेतुल्ला गुलेन के समर्थकों का है। एर्दोगान इससे पहले भी फेतुल्ला गुलेन पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं और उनके काफ़ी विरोधी रहे हैं। और तख्तापलट की कोशिश कर रहे सेना के धड़े ने कर्फ्यू का ऐलान किया है, और इसके बावजूद इस्तांबुल के मध्य में तकसीम चौराहे पर राष्ट्रपति एर्दोगान के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। इस तरह की खबरें आई हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तख्तापलट का विरोध किया है, और इस दौरान झड़पों की भी खबरें आई हैं। और सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर हम कई तस्वीरों को देख पा रहे हैं जिसमें तकसीम चौराहे पर लोगों की हम बड़े संख्या में लोग जमा हुए हैं, और ये भी लोग कह रहे हैं कि उन पर गोलियां चलाई गई हैं। तो इसके अलावा जिस खबर पर मेरी नज़र गई, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि निजी टीवी चैनल CNN तुर्क के प्रसारण को रोक दिया गया है। इस बीच अन्य अखबारों के दफ्तरों पर भी सेना के जो तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल सैनिक घुसे हैं और उन्होंने कामकाज रोकने की कोशिश की है। इस बीच ABC न्यूज़ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस्तांबुल पुलिस के मुखिया ने ये कहा है कि तुर्की में तख्तापलट में शामिल 104 सैनिकों ने समर्पण कर दिया है। तो पिछले कुछ ही घंटों में बहुत सारी घटनाएं हुई। सेना ने सत्ता पर नियंत्रण का दावा किया, सरकार की तरफ से इनकार किया गया, लेकिन अब ये भी खबर है कि समर्पण कर दिया गया है। और सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने बताया जा रहा है कि उन्होंने तख्तापलट की कोशिश में शामिल सेना अधिकारियों के नाम की एक सूची जारी की है। तो इस वक्त तुर्की में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है,
असमंजस की स्थिति है, और घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। और जैसे कि तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोगान ने लोकतंत्र के समर्थन में लोगों को सड़कों पर आने की अपील की थी, तो बड़ी संख्या में तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग सड़क पर भी उतर आए हैं, और वहीं करीब पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की भी ऐसी खबरें आ रही हैं। मैंने तुर्की में मौजूद स्थानीय पत्रकार फुरकान हामिद से बात की और इस बारे में और जानकारी मांगी।
سلسلہ رات 10 بجے شروع ہوا تھا, 2:03 بج گئے ہیں یہاں کا مقامی وقت کے مطابق. یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, وقت بہ وقت پھر سے بمباری کی آوازیں بھی آتی ہیں. اور ایک تقریباً 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ ترکی کی نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پر بھی بمباری کی گئی ہے. اور ترکی کے جو پولیس فاؤنڈیشن ہے, پولیس ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر بمباری کے دوران 17 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. مزید کے ہلاک ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے.
اور جو اردوغان نے لوگوں سے لوکتنتر کا سمرتھن کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی ہے, تو ابھی کس طرح کا ماحول ہے وہاں پر؟
ہاں جی ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی اردوغان نے عوام سے اپیل کی, اگر وہ جمہوریت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, جمہوریت ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور فوج آئندہ کسی صورت میں ملک میں مارشل نہ لگے, تو وہ فوری طور پر سڑکوں پر نکلے. انہوں صدر اردوغان کی اس اپیل تو فوری طور پر رد عمل سامنے آیا اور عوام جوک در جوک جو ہے بڑے بڑے شہروں میں, خاص طور پر انکارا اور استنبول میں جو ہے سڑکوں پر نکلے. انہوں نے ٹینکوں کے آگے اپنے آپ کو بچھاڑ دیا اور انہوں نے چڑھ کر ان کو آگے جانے سے روکا. ایئرپورٹ پر جو ٹینک جا رہے تھے واپس آنے پر مجبور ہو گئے, جو نیشنل اسمبلی کی طرف ٹینک جانا چاہتے تھے وہ بھی واپس آنے پر مجبور ہو گئے. ایئرپورٹ پر جو ہے وہ فوج نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اور اب مزید جو ہے فوج نے ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور ترکی کی جو نیشنل پارٹی ہے, جو آگ پارٹی جسے کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی, وہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں اس وقت سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ جو جو ہے جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہیں, وہ رات بھر جو ہے وہ جاری رہیں گے, وہاں پر پہرہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
جی, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سینا کا پرتنیدھتو کر رہا ہے گٹ, اس نے کہا ہے کہ اس نے پورا نینترن کر لیا ہے. یہ گٹ کون سا گٹ ہے؟
یہ گروپ جو ہے یہ فیض اللہ گلن ہے, ایک مذہبی تنظیم ہے فیض اللہ گلن, جیسے پاکستان میں طاہر القادری ہے اسی کی طرح اس کو متحدہ امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. یہ گروپ یہ اس کے جو ہیں منتظمین جو ہیں فیض اللہ گلن وہ امریکہ میں مقیم ہیں, ان کے ساتھی جو ہیں ان کے جو حماتی ہیں وہ فوج میں بھی ہیں اور پولیس میں. پولیس سے تو پیچھے 2 سال سے صفائی کروا لی گئی تھی, البتہ فوج کے اندر یہ ابھی بھی خفیہ طور پر موجود تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی, جنہوں نے یہ بغاوت کھڑی.
لوگوں کی سرکشا کا انہوں نے آشواسن دیا ہے, ساتھی کہا ہے کہ نیا سمویدھان لکھا جائے گا. تو ان کا ویروت کس چیز کو لے کر ہے؟ کیوں ناراض ہیں یہ اردوغان سے؟
یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام قائم ہے, جبکہ صدر رجب طیب ایردوان آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے 3 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ملک کے اور اس وقت جو ہے وہ صدر ہیں. وہ چاہتے ہیں صدر کے اختیارات آئین کے تحت, تو صدر کے اختیارات برائے نام ہے جیسے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ہوتا ہے, لیکن اب وہ صدر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ملکی جو ہے صدارتی نظام متعارف کروایا جائے. اسی کے لیے انہوں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں اور ملک کی مختلف سیاسی جماعتیں ملک پہ کسی صورت بھی صدارتی نظام نہیں چاہتی, جس کا فائدہ اٹھا کر یہ فوجیوں کے ٹولے نے جو ہے وہ ملک میں صدارتی نظام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے اور صدر رجب طیب ایردوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے.
اردوغان جو ہے چھٹی پر گئے ہوئے تھے, وہ چھٹی سے لوٹ رہے ہیں, لوگ ان کے کہنے پر اب سڑکوں پر بھی اتر آئے ہیں, لیکن کیا لگتا ہے کہ کیا استھتی پر نینترن ہو پائے گا؟
ہاں جی ہاں, اب یہ بیانات سرکاری طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے اپنا کنٹرول جو ہے وہ قائم کر لیا. ترکی ریڈیو ٹیلی ویژن جو کہ سرکاری نشریاتی ادارہ جس پر باغیو نے سب سے پہلے قبضہ کیا تھا, وہاں کو واگ گزار کروا لیا گیا اور وہاں سے نشریات جو ہے وہ شروع ہو گئی. اسی طرح جو خفیہ ایجنسی ہے وہاں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, خفیہ ایجنسی کو بھی جو ہے وہ بھی واگ گزار کروا لیا گیا.
یہ تھے ترکی میں موجود ستھانیہ پترکار جو دعویٰ کر رہے تھے کہ استھتی پر نینترن ہو جائے گا. یہ تھے فرقان احمد ترکی سے. اور وہیں ترکی میں 2 بڑے شہروں میں دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے جب سینا نے ترکی کو اپنے نینترن میں لینے کی کوشش کی ہو. ایک نظر ڈال رہے ہیں دلنواز پاشا. دلنواز
جی, پہلے ایک تازہ جانکاری ہم اپنے شروتاؤں کو دے دیں. ترکی کے راشٹرپتی اردوغان ابھی ترکی پہنچ گئے. ان کی تصویریں ٹی وی پر آئی ہیں اور انہوں نے بھاری بھیڑ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو لوگوں کی اچھا سے اوپر ہو جائے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں. تو یہ ابھی کا بالکل گھٹنا کرم ہے. اور اب ہم بتاتے ہیں اس سے پہلے ترکی میں کیا رہا ہے. ترکی میں سینا کے ایک گٹ نے ستا پر نینترن کا دعویٰ کر لیا ہے. یوروپ اور ایشیا کے بیچ بٹا ترکی سامرک روپ سے اس شیتر میں بہت مہتوپورن جگہ رکھتا ہے. اس سے پہلے بھی ترکی تختہ پلاٹ اور ستا میں استھرتا کا گواہ رہا ہے. ایک سمے میں اوٹومن سامراجیہ کا کیندر رہے ترکی میں 1920 کے دشک میں راشٹروادی نیتا مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نیتتو میں دھرم نرپیش گڑتنتر کی استھاپنا کی گئی. 1923 میں ترکی کو گڑتنتر گھوشت کیا گیا, مصطفیٰ کمال اتا ترک کو راشٹرپتی بنایا گیا. 1938 میں اتا ترک کے ندھن کے بعد لوکتنتر اور بازار آدھارت ارتھویوستھا کے وکاس میں خلل پڑ گیا. اس کے بعد سے سینا نے کئی بار دھرم نرپیشتا کے لیے خطرہ سمجھی جانے والی سرکاروں کو بے دخل کیا ہے. 1952 में तुर्की ने अतातुर्क की तटस्थता की नीति को छोड़ नेटो गठबंधन सेना के साथ हाथ मिला लिया। 1960 में डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ सेना ने तख्ता पलट किया। 1974 में तुर्की की सेनाओं ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, जिसका नतीजा साइप्रस द्वीप का बंटवारा था। 1980 में तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ केनान एवरेन के नेतृत्व में तीसरा तख्ता पलट किया गया। 1984 में कुर्द संगठन पीकेके ने अलगाववादी गुरिल्ला अभियान शुरू किया जो एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। अब तक कुर्द संगठनों और तुर्की की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। तुर्की काफी लंबे समय से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता रहा है। 2005 में सदस्यता पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इसमें बहुत धीमी प्रगति हुई है क्योंकि कई यूरोपीय संघीय देश तुर्की की सदस्यता को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं है। 2011 में सीरिया युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की की सीमाओं पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीरिया युद्ध से विस्थापित हुए लाखों शरणार्थी तुर्की पहुंच रहे हैं। 2015 में तुर्की पिछले कुछ समय से कई चरमपंथी हमलों का शिकार हुआ है। 2015 के बाद से यहां कई हमले हुए हैं। अंकारा में पिछले साल एक रैली पर हमला हुआ। पिछले दिनों इस्तांबुल में अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चरमपंथी हमले में कई लोगों की जान गई थी। 2015 के बाद से तुर्की के जो सुरक्षा हालात हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और अब हम ये ताज़ा तख्ता पलट की कोशिशें देख रहे हैं।
जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पाशा। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं वो हमें बताइएगा। लेकिन अभी जिन लोगों ने रेडियो खोला है उनको बता दें कि तुर्की में सेना ने देश पर नियंत्रण करने का दावा किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने तुर्की के घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट कर ब्रितानी दूतावास से स्थिति पर नजर रखने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने तुर्की में शांति की अपील की है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की अध्यक्ष फेडरिका मोगरेनी ने तुर्की में लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करने और संयम बरतने की अपील की है। रूस ने भी तुर्की की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि रूस फिर से तुर्की को शांति और स्थिरता के रास्ते पर लौटते हुए देखना चाहता है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मॉस्को में कहा कि वो तुर्की में स्थिरता और शांति की उम्मीद करते हैं। सीधा चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, ये बताइए कि तुर्की के घटनाक्रम पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वहां पर?
जी देखें, राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ ही देर पहले अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से बात की जो यूरोप में है, और उनसे और व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों ही ने कहा है कि तुर्की में सभी पक्षों को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को समर्थन देना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक भी की है और तुर्की में सभी से संयम बरतने की अपील की, हिंसा और खून खराबा नहीं हो, ये दरख्वास्त किया है। वहीं विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अलग से एक बयान जारी किया और कहा कि अमरीका इस अस्थिर या जिसे हम फ्लूइड सिचुएशन कहते हैं उस पर नजर रख रहा है और उसे काफी चिंता के साथ देख रहा है। उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बात की है और तुर्की की लोकतांत्रिक सरकार के प्रति पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद अमरीकी नागरिकों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की है और तुर्की में सभी पक्षों से अनुरोध किया है कि वहां के दूतावासों और अधिकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा आपसे कुछ ही देर पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि वो तुर्की की स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और अमरीकी फौजियों, उनके परिवारों और ठिकानों को उनकी सुरक्षा के सभी इंतजाम बरकरार है। और इंसर्लिक एयरबेस जहां से आईसिस के खिलाफ हवाई हमले हो रहे हैं वो पहले ही की तरह जारी है। और एक छोटी सी बात और इसमें जो प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जो स्थानीय पत्रकार वहां से जो कह रहे थे कि वहां इल्जाम फैसुल्ला गुलेन पर लग रहे हैं कि उनके समर्थकों का हाथ हो सकता है, तो जो यहां अमेरिका में खुद रहते हैं, ये धार्मिक नेता है और उनकी तरफ से अब से कुछ देर पहले ये बयान आया है कि किसी तरह की फौजी दखलंदाजी की वो भर्त्सना करते हैं और अर्दवान के जो समर्थक है उनकी तरफ से इस तरह के बयान गैर जिम्मेदाराना है।
जी, गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि तुर्की में जो हालात हैं अमरीका के लिए ये आईएस के खिलाफ लड़ाई में कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं?
देखें, तुर्की एक तो नेटो का सदस्य है, नेटो में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की है और रणनीतिक रूप से अमेरिका का वो एक बेहद करीबी सहयोगी देश है। और जिस इंसर्लिक एयरबेस जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, वहां अंदाजा है कि 5000 अमेरिकी फौजी और उनके परिवार हैं। लेकिन इन सबसे अहम बात यह है कि दोनों ही देश एक साथ आईसिस यानी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन के खिलाफ हवाई हमले कर रहे हैं, यानी दोनों देशों की फौज के बीच बेहद करीबी ताल्लुकात हैं। वहीं तुर्की के जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति एर्दोगान हैं, उनके साथ इस समय ओबामा प्रशासन के जो रिश्ते हैं उनमें खासा तनाव है आप कह सकती हैं। अर्दोगान और ओबामा दोनों सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन पहले दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जिसे हम ब्रोमांस कहते हैं, ये कहा जाता था दोनों ही नेताओं के बीच में। लेकिन अब अर्दोगान ओबामा की जो सीरिया नीति है उससे खासे नाराज है। वहीं ओबामा अर्दोगान की कथित रूप से, जिसे हम अथॉरिटेटिव नीतियां कहते हैं, उनकी आलोचना कर चुके हैं। इसलिए तुर्की के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर होगी कि अमरीका से किस तरह का संदेश आता है। फिलहाल ओबामा ने पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करने की बात की है, लेकिन कुछ लोग उस बयान में ये जरूर गौर कर रहे हैं कि उसमें राष्ट्रपति अर्दोगान का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ लोकतंत्र या लोकतांत्रिक ढांचे की बात है। कुल मिलाकर अमरीका बेहद गौर से देख रहा है कि कौन है जो इस उथल पुथल के पीछे है, क्या इसे पूरी फौज का समर्थन है या फिर कुछ गुट हैं जो इसके पीछे हैं, और इसीलिए बहुत ही नाप तोल कर आप कह सकती हैं कि बयान आ रहे हैं, क्योंकि अभी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो उनकी जंग है उसमें तुर्की के साथ उनका जो सहयोग है बेहद अहमियत रखता है, और इसलिए वो बहुत संभल कर इस क्षेत्र में बयान दे रहे हैं, इस मामले पर बयान दे रहे हैं।
जी, बहुत संभल कर बयान दिए जा रहे हैं तुर्की के घटनाक्रम पर। ये थे ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमें दिलनवाज पाशा ने भी बताया कि तुर्की में पहले भी तख्तापलट की कोशिश होती रही है, और यूरोप और एशिया के बीच बटा तुर्की सामरिक रूप से इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। रिचप तैयब अर्दोगान की एके पार्टी को तुर्की के रूढ़िवादी मुस्लिमों का जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है, और अपने विरोधियों के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने के लिए उनकी आलोचना भी होती रही है। लेकिन सैन्य नियंत्रण की जो बात हो रही है, ये घटना क्यों सामने आई? मैंने इस बारे में जानकारी के लिए अमरीका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अकबर अहमद से बात की।
सिचुएशन जो सामने आपके है वो ये है कि काफी अफरा तफरी है, और अभी तक ये वाजे नहीं है कि किस किस का पल्ला भारी है। एक तरफ फौजों के काफी यूनिट्स हैं जिनने एक किस्म की बगावत की है हुकूमत के खिलाफ, तो एक तरफ सेना है, यूनिट सेना के, पूरी सेना नहीं। दूसरी तरफ जनता है जो ज्यादातर भी जमहूरियत हुकूमत के साथ है। अब इसमें जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि सदर साहब जो है अर्दोगान, वो इस्तांबुल, ना अंकारा ना इस्तांबुल में थे, वो छुट्टी पे गए हुए थे बाहर। तो सेना ने फौरन दोनों एयरपोर्ट्स बंद किए, दोनों जो पुल हैं बड़े पुल बॉस्फोरस पे वो बंद किए। तो मतलब है कि इस्तांबुल और अंकारा दोनों जो अहम शहर हैं तुर्की के, वो कट ऑफ हो गए रेस्ट ऑफ तुर्की से। तो इस ये अर्दोगान साहब के लिए बड़ा मुश्किल था वापस आना, वो अभी अभी पहुंचे हैं, और इसके साथ उनके आने के साथ सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि उनकी काफी सपोर्ट है अवाम में।
जी, अवाम में काफी सपोर्ट है, और वो सड़कों पर दिखाई भी दे रही है, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये जो एके पार्टी है, उसके सत्ता में आने से पहले ही सेना ने चार बार इस्लामिक प्रभाव वाली सरकारों को आने से रोका है, तो ये जो अब अचानक देर रात सेना ने कहा कि उसने नियंत्रण में ले लिया है देश को, ये क्या कारण क्या देखते हैं?
इसके एक तारीखी कारण है। आप अगर देखें तो फौज जो है वो अमूमन तारीखी तौर पर वो ज्यादा कमालिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जाती है। कमालिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है सेक्युलर तुर्की, इस्लाम को दूर रखना हुकूमत से, और तुर्की को एक जदीद मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट समझना, और उस तरफ, उस रवैये की तरफ आना। अब उनकी पोजीशन में और अर्दोगान की पोजीशन में थोड़ा सा इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ आप देख रहे हैं जो कू हुआ है कि उनके जो यूनिट्स हैं जो चाहते हैं वो सेक्युलर कमालिस्ट ट्रेडिशन, उन्होंने ये एक्शन लिया है। और उनका पहला एक्शन ये था कि जो भी इस्लामिक सिंबलिज्म है उनको हटाया जाए। जो पब्लिक का रिएक्शन था वो भी आपके सामने है, क्योंकि अर्दोगान की जो पार्टी है हर वक्त इलेक्शन में वो जीती है, और 50-55% अक्सरियत से जीती है। तो मतलब है जमहूरियत में इनकी काफी ताकत है, और इसलिए ये कू जो है वो ज्यादा मुझे लगता है कामयाब नहीं होगा। हालांकि बहुत खतरा है, जब सेना में अंदरूनी तौर पर ये इख्तलाफ हो तो बहुत खतरा होता है, क्योंकि एक यूनिट हुकूमत की तरफ है, दूसरी यूनिट हुकूमत के खिलाफ है।
इससे अगर मधेपुर की बात की जाए तो कितना बड़ा झटका है जिस तरह से तुर्की में ये घटना हुई है?
बहुत बड़ा झटका है, और एक सतह पर नहीं, दो तीन सतह पर। तुर्की जो है उसकी बहुत अहमियत है पूरे रीजन में। देखें, पहले तो अंदरूनी तौर पर तुर्की में अंदर अंदरूनी तौर पर एक कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है कुर्दों के साथ। बहुत बड़ा इलाका है कुर्दों का, वो कबायली हैं, उनकी अपनी एक उनका अपना कल्चर है, अपनी तारीख है। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अर्दवान और कुर्दों में एक बड़ी बिटर किस्म की एक कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है। दूसरा फिर फ्रंट है इनका ये आइसिस और ये बाहर वाले जो सीरिया की तरफ से हमले हो रहे हैं तुर्की पर और तुर्कों पर, तो वो दूसरा प्रेशर है। तीसरा प्रेशर है तुर्की पर रेफ्यूजी, जो सीरियन रेफ्यूजी सीरिया से तुर्की आते हैं और तुर्की से फिर ग्रीस जाते हैं और ग्रीस से कोशिश करते हैं जर्मनी विलायत ये यूरोप ममालिक जाने की, तो वो तीसरा प्रेशर है। और चौथा प्रेशर तुर्की पर है रूस का, ये रूस में और तुर्की में हालात इनके अगर आपको याद होगा वो जो हवाई जहाज गिरा था, तुर्की ने गिराया था, तो उसके बाद हालात काफी तल्ख हो गए थे इनके दरमियान।
ये थे अमेरिका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अकबर अहमद। और यहाँ पर बता दें श्रोताओं को कि तुर्की में सेना ने दावा किया है कि उसने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वहीं सोशल मीडिया में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बताने के लिए हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है दिलनवाज। दिलनवाज, आप अपने फोन को भी साथ में लाए हैं, बताइए।
जी, अभी जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ उसमें तुर्की के एक सैनिक है जो तख्ता पलट की कोशिश में शामिल था और भीड़ उसको खींचते हुए ले जा रही है। सिर्फ एक ही अकेली ऐसी तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया में है जिसमें लोग टैंकों पर चढ़ गए हैं, सैनिकों को लोगों ने जो बिना किसी हथियारों के सैनिकों को कब्जे में ले लिया है। जाहिर तौर पर इस समय तुर्की में अराजकता और असमंजस का माहौल है, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इस्तांबुल की बात की जाए तो भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कई जगह हजारों लोग दिख रहे हैं, झंडे लहराते हुए लोग दिख रहे हैं। और एक बड़ी आइकनिक तस्वीर मैंने देखी है जिसमें एक आदमी अकेला तुर्की में टैंक के आगे लेट गया है, वैसी ही तस्वीर है जैसी कभी ध्यानमन चौक चीन से आई थी उस समय, लेकिन उसका मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर हैं और बताती हैं कि राष्ट्रपति अर्दवान ने जो लोगों से बाहर आने का आह्वान किया था उसे लोगों ने सुना है, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। ये इस्तांबुल की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा जो बाकी फेसबुक पर कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी मैंने एक स्टेटस पढ़ा डमस्कस से जहाँ पर किसी ने लिखा है कि दमिश्क में जो है जश्न में फायरिंग की गई है, वहाँ के जो हैं सीरिया में तुर्की में जो ये तख्ता पलट हुआ है इससे खुश हैं। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हो सकता है ये बहुत नामुमकिन है कि ये जो तख्ता पलट है ये कामयाब हो और इसके बहाने अर्दवान जो उनके विपक्षी हैं उनका सफाया कर सकते हैं और सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग तुर्की के लिए दुआएं कर रहे हैं, जो तुर्की के बाहर तुर्क के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शांति लौटे, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे है। लेकिन तस्वीरें सबसे ज़्यादा जो आ रही हैं वो इस्तांबुल से हैं और उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति अर्दवान के कहने पर बहुत सारे लोग सड़कों
पर अर्दवान को बहुत समर्थन मिल रहा है। और हरिता, आपसे ताज़ा जानकारी के लिए फिर से आएंगे, लेकिन आज जो इंडिया बोल का विषय है वो भी जान लेते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल। क्या मरीजों के प्रति डॉक्टर और अस्पताल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं या पैसा कमाने की होड़ ने डॉक्टरी के पेशे को दुकानदारी में बदल दिया है? इस मुद्दे पर विशेष रिपोर्टों की श्रृंखला के बाद इंडिया बोल में इसी विषय पर हम जानेंगे आपकी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 16 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, आज 7:30 बजे इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। और आपको श्रोताओं बता दें कि फ्रांस के नीस में भीड़ पर ट्रक हमले को लेकर फ्रांस की सरकार निशाने पर आ गई है और कई नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ये हमला रोका जा सकता था। इस बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको अगले कार्यक्रम विश्व भारती में देंगे, क्योंकि अब जो चल रहा है तुर्की का घटनाक्रम जो लगातार बदल रहा है उस पर अपडेट लेते हैं हरिता कांडपाल से। हरिता
जी, ताज़ा घटनाक्रम में अब ये कहा जा रहा है कि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। प्रधानमंत्री तुर्की के जो प्रधानमंत्री हैं बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने कहा है कि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। MIT ने कहा है कि अभी कुछ जगहों पर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे धड़े की तरफ से विरोध हो रहा है। वहीं MIT के प्रवक्ता नू यिलमाज ने हुरियत वेबसाइट से कहा है कि लोग तख्ता पलट की कोशिश में शामिल सैनिकों पर हावी हो रहे हैं और जो भी इस कोशिश में शामिल थे उन पर मुकदमा चलेगा और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान इस्तांबुल पहुंच गए हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें शामिल थे उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सेना की सफाई की योजना है उनकी सरकार के पास, यानी कि उनके जो विरोधी हैं उन पर अब निशाना साधा जाएगा आगे। और जो भी तख्ता पलट की कोशिश में शामिल हुए उनकी गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है।
जी, तो तुर्की में तख्तापलट की कोशिश होने के बाद जो है एर्दोगान ने कहा है कि सेना की सफाई की उनकी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिता इस जानकारी के लिए। बस नमस्कार भारत में श्रोताओं, इतना ही आपके पास ताज़ा अपडेट के साथ विश्व भारती में दोबारा लौटेंगे।